चंद्राय गौरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। भक्त्या विहीनाय पराधलक्षे क्षिप्त्वास्य कामादिकरणं कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्नं वन्दे नमस्ते च। हम लोगों का 3 दिवसीय श्री श्री जन्माष्टमी महोत्सव भगवान और गुरु की कृपा से, गुरु और भगवान की कृपा से बहुत सुंदर रूप से संपन्न हुआ, जिसमें यहाँ के हमारे ब्रह्मचारी सन्यासी लोग, गृहस्थ भक्त लोग, विदेशी भक्त लोग, बाहर के लोगों ने अपना पूर्ण सहयोग दिया। पिछले नगर संकीर्तन भी अपने किस्म का, मैं समझता हूँ कि ऐसा नगर संकीर्तन कहीं भी संभव पर नहीं होगा, यहाँ पर इतना सुंदर रूप से हुआ। लोगों में उल्लास हो सकता है कि बड़ी बड़ी झांकियाँ बनाएं और सब, किंतु कीर्तन का उल्लास जो महाप्रभु जी वाला है ये कहीं नहीं होगा। करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं, ढोली बना सकते हैं, सोने की पालकी में बैठ सकते हैं, ये सब होगा, किंतु कलयुग का जो नाम संकीर्तन धर्म है ये हम लोगों जैसा कहीं विश्व में होना बड़ा कठिन है। दूसरे दिन उपवास के दिन भी और रात में बड़ी अच्छी तरह से बधाइयाँ हुई, बड़े अच्छे अच्छे कीर्तन करने वाले और हमारे ब्रह्मचारी लोग यहाँ करने वाले लोगों ने बहुत ही सुंदर रूप से बधाइयों का कीर्तन किया। महिलाएं भी पीछे नहीं रही, महिलाएं भी बहुत योगदान किया कीर्तन में, डंडेशाही में, सब में, और विशेष करके कल का जो दिन था नंदोत्सव का, लोगों का उमंग हमने देखा। ये गात 10 से लेकर के 12 बजे तक लोगों में उमंग, चारों तरफ में लोग, बच्चे लोग और सब लोग उमंग से आए दधी कांदा के लिए। नंद बाबा के घर में दधी और दूध की कीचड़ बन गई, घर से लोग ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं, कृष्ण के लिए झुंगली, मुरली और सब वस्त्र अलंकार ला रहे हैं, यशोदा मैया के लिए, नंद बाबा के लिए पीली पगड़ी और सब ला रहे हैं, और दधी दूध के कांवर ले आ रहे हैं और वहाँ पर लीच देते हैं, दधी में हल्दी लगाकर और सब लोगों को स्नान करा देते हैं, इसलिए इसको नंदोत्सव में दधी कांदा कहते हैं। वहाँ पर नंद बाबा के घर में ये सब चीज़ें हुई, तो यहाँ भी थोड़ा सा कीर्तन के माध्यम से और थोड़ा सा ये भी दिया गया। और नंद बाबा ने हाथी घोड़े और बूढ़ों को क्या दिया, बूढ़ों को पालकी, किस लिए तो पालकी दिए हैं, तो कहार दिया होगा कि नहीं, कहार धोने वाले, जिनको दांत वोत नहीं है, ऐसे जो बूढ़े लोग होंगे, आपके दांत नहीं है ना, हाँ तो आपको पालकी दे दे, ऐसे सब लोगों को दान दिया। इतना दान दिया कि दान लेने वाले ने, हाँ बड़ा उत्सव हुआ वहाँ। तो यहाँ पर भी हाथी घोड़े तो नहीं, हाथी घोड़े के खिलौने, मिठाइयाँ और सब पूरा रूप में उड़ेल दिया गया यहाँ, उसमें भी लोगों का उत्साह उमंग देखने को बनता है। इसमें हमारे डोरी लाल नहीं, अब तो हो गए हैं दामोदर लाल जी, दामोदर लाल जी का सहयोग बहुत रहा, दिन रात करके भिक्षा किया वो अलग, अपने साथियों को ले आया और यहाँ पर जो महफिल जमी सबको निमंत्रण करके लाना और उसकी व्यवस्था करना, और अपने दीनहीन होकर के पीछे रह करके, कोई सम्मान नहीं चाहिए, और कहीं कोई रहे तो हमारे साथ आकर के फोटो खिंचवाएं, क्या क्या करें, इसका कुछ नहीं है। इसलिए इसको वैसी शुद्ध भक्ति हो, इन लोगों का बहुत सहयोग रहा। इस तरह से कल ये सब हुआ। इसके बाद में उत्सव ऐसा जमन जमा कि 7 बजे से प्रेमानंद के भंडार में वो लग गई भीड़ लोगों की, 7 बजे से ही 8 बजे से, और वो थम ही जा कर के 8-9 बजे, और आज भी चला सवेरे से, वो थम नहीं रहा है। हम समझते हैं कि अभी और कुछ दिन लग जाएंगे, थमेगा। कम से कम तो 10-15 हजार आदमियों ने यहाँ आ कर के प्रसाद पाया, और तो बाकी रहे। अरे भाई क्या हो गया, उसी की श्रृंखला में फिर हम रविवार को यहाँ के मथुरा के मूर्धन्य पंडित, वृंदावन के पंडित लोग कृष्ण के संबंध में कुछ बोलने के लिए बुलाएंगे। विषय रखा है भागवत और भक्ति के विभिन्न स्तर का तारतम्य। जैसे ध्रुव महाराज की भक्ति तो है, किंतु शुद्ध भक्ति नहीं है, सकाम भक्ति। प्रहलाद महाराज की भक्ति है, वो ज्ञानमयी भक्ति। इसके बाद अम्बरीश महाराज की शुद्ध भक्ति, उनसे भी श्रेष्ठ वो क्या नाम है, वृत्रासुर की, कुछ गोपियों की भाव मिलित है उसमें। इसके बाद में कृष्ण भक्ति रस भाविता, इसका भी भागवत में बहुत से उदाहरण हैं। इसके बाद में दास्य सख्य वात्सल्यमयी भक्ति, और अंत में गोपियों की भक्ति। असल में कृष्ण के इस आने का उद्देश्य क्या था, और सबको गौण रख दीजिए, वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा, आत्मधर्म की प्रतिष्ठा, धर्म संस्थापन, ये सब गौण, यहाँ तक कि ब्रज भक्ति का रसस्वादन ये भी होने पर भी उनका मूल था क्या, उन्नत उज्ज्वल पार की ये भाव का रसास्वादन, और जगत में उसको छोड़ करके जाना जिसे चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के उसका प्रचार कर सके, ये उनका उद्देश्य था। जैसे चैतन्य महाप्रभु के गौण और मुख्य बहुत से उद्देश्य हैं भक्ति के उनके जगत में आने का, किंतु मूल क्या है, राधाया प्रणय महिमा, और दूसरे नंबर पर है अनर्पित चरिंग चिरात समर्पयी तुम उन्नतोज्वल सांसा भक्ति, ये है। ये सबको कृष्ण ने आस्वादन किया, इस पर हम लोग विवेचन करेंगे। पंडितों को भी बुलाए हैं, सदगुरु के आश्रित नहीं होने से जितने बड़े भी दिग्विजयी विश्व का पंडित हों, इन सब चीज़ों का आप विवेचन नहीं कर सकते। तो अभी हमने बुलाया है छल बल कपटता से, किस लिए, हमारे ब्रह्मचारियों के और सन्यासियों के विचारों को कुछ समझें लोग, कानों में जाएं उसको विचार करें, पहले उनसे बुलवाएंगे, और अंत में हम अपने सन्यासी ब्रह्मचारियों को खड़ा करेंगे, ये सुनो हम भी कुछ बतलाएंगे, नई चीज़ सुन करके जाओ, इसलिए बुलाया है। भागवत का तात्पर्य क्या है, आत्मा प्रसन्नता, आत्म माने कृष्ण, जय आत्मा सबई पुंसांग परो धर्मो जतो भक्ति रधुखजे अहेतुक्य अव्यवहिता ज भक्ति, ये तो है। जब भक्ति पुरुषोत्तम में ये कहाँ तक जाएगा, राधा जी के भाव तक पहुँच जाएगा। जगत के लोग जानते हैं, विद्वान लोग जानते हैं इस भाव को, या राधा भाव तक ये पहुँचेगा विद्वत वृत्ति से, नहीं समझते हैं। तो छल बल से वो कुल लोग समझें आए, इसलिए उन सबको निमंत्रण किया है। आप लोग भी प्रस्तुत रहेंगे, हमारे सन्यासी लोग ब्रह्मचारी लोग उस सभा में बोलने के लिए। तो उसकी इस श्रृंखला में, कृष्ण जन्माष्टमी की श्रृंखला में ये भी आएगा, ये कृष्ण यानी भागवत और भक्ति के तारतम्य का विवेचन ये भी रखेंगे। इसके बाद में शीघ्र ही और एक कड़ी श्रृंखला आरंभ होगी, वो श्रृंखला होगी क्या, स्वामिनी जी श्रीमती राधिका जी की का जन्म महोत्सव। उस कड़ी में भी हम लोग चाव आएंगे विभिन्न जगहों से, उनके संबंध में विवेचन करेंगे, उनकी भी बधाइयाँ होंगी, उनके लिए बधाई प्रस्तुत करके आना सब लोग, राधा जी का विशेष। लाला जी के मुख को रगड़ दिया ना, किससे, गुलाब से, ऐसे ऐसे सब बधाइयाँ आएंगी, उसको कह देना ये प्रस्तुत होकर के आएगी, यदि उसके कुछ कर सकी तो वो लीला अभिनय भी करा देगी। इस से हम लोगों का आज हम लोग अभी जो बतलाया वर्णाश्रम धर्म के संबंध में, मैंने कल भी बतलाया परसों भी बतलाया, कैसे वर्णाश्रम धर्म की स्थापना की, किस प्रकार से आत्मधर्म की प्रतिष्ठा गीता के माध्यम से किया। अब हम चाहते हैं कि आज की सभा में कृष्ण ने प्रेमधर की स्थापना की किस रूप में, यहाँ तक कि ब्रज गोपियों के प्रेम तक की स्थापना की, इस विषय में वक्ता लोग कुछ कुछ अपने वक्तव्यों के द्वारा राधा कृष्ण के चरणों में अपनी पुष्पांजलि अर्पित करें। तुम्हें बोले छो ना कि पूर्वे और ये बोले हैं और माधव महाराज बोले हैं, यो तुम लोग काला चांद जी कुछ बोले हैं और साधारण, तो आज हमारे तीर्थ महाराज जी कुछ उपस्थित करें इसके संबंध में। थोड़ा सा हाँ इधर में आ जाओ, या इधर में है, कल नहीं परसों अपने नामों में दे दी, अपनी सारी कृपा की शक्ति भी उसमें दे दे, इसलिए कलयुग में जो कृष्ण या राम नहीं कर सकते उनका नाम उससे अधिक कृपा करें। इसलिए जहाँ भी कीर्तन हो उसमें महामंत्र हरे कृष्ण की प्रधानता दें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। इसमें जो पहला जो हरे है वो इसलिए कि राधिका जी हमारे संकटों को हरण कर लेती हैं, कृष्ण के चित्त को भी हरण कर लेती हैं, इतनी वो सुंदरी हैं मधुर हैं, अपनी प्रेममयी सेवा से कृष्ण के चित्त को भी चुरा लेती हैं, इसलिए उनका नाम हरे है। इसलिए हरे कने से राधा जी को समझो और कृष्ण कने से कृष्ण को समझो, और चलते फिरते उठते बैठते सोते समय फिसलते समय कोई भी नियम नहीं है, जब कभी हो जोर से कीर्तन कर सकते हैं, जब कर सकते हैं, माला से कर सकते हैं, बिना माला का भी कर सकते हैं, ये कलयुग का परम धर्म है, इसे भगवान की प्राप्ति होगी, जन्म मरण के क्लेश दूर हो जाए, इसमें खूब विश्वास के साथ में ये सा करो, क्योंकि आप लोग यहाँ आती हैं इसलिए अच्छे उपदेश दिए जाते हैं। दूसरी जगह में बतलाएंगे जो दुर्गा काली शंकर राम कृष्ण सब एक ही हैं, ऐसा मत समझना, गुड़ और गोबर को एक साथ में मत मिलाना, नहीं तो राधा कृष्ण वहाँ नहीं रहेंगे, चले जाएंगे। इसलिए एकादशी अच्छी तरह से पालन करो, जितने सोमवार का व्रत है, शुक्रवार का व्रत है, मंगलवार का व्रत कर, और जितने भी ब्रज में व्रत हैं कोई एकादशी का करने से कोटि कोटि व्रत त्यौहार सब पूरे हो जाते हैं, उसका फल मिल जाता है एक एकादशी का करने से, दोनों काली और जो
शिवजी
एक और एकादशी है, दोनों को दोनों को एक समान में आदर करके करेंगे, कृष्ण एकादशी और शुक्ला एकादशी, दोनों में महीने में दो एकादशी आती हैं, दोनों का भी करें। और व्रत आप करें ना करें, यदि एकादशी व्रत किया तो सब व्रत हो गया, और भगवान का नाम किया तो सब कुछ पूजा का फल मिल गया, ऐसा विश्वास रख करके भगवान का भजन करो। कोई कोई मथुरा में देखते हैं फूल की साजी ले ली डलिया, और जमुना जी में स्नान किया और वो फूल और फूल की माला जितने आसपास से दुर्गा जी के मंदिर, गणेश जी के मंदिर, हनुमान जी के, काली दुर्गा जितने भी मंदिर हैं सब मंदिरों में पूजा करते हुए उसके बदले में कीर्तन करो, सबको सम्मान करो, किंतु पूजा राधा कृष्ण की ही होगी। तब तो आप लोग शुद्ध रूप में भक्ति पा करके कृष्ण की, राधा जी की कृपा पाएंगे। आप लोगों का समय हो चुका है, अब हम लोग भागवत का पाठ करेंगे। जिसको सुनना है वो रहे और जिनको काम है अपने अपने कामों में जाइए, फिर एकादशी को आइए। अभी राधाष्टमी आ रही है, राधाष्टमी के दिन में राधा जी का चाव आएगा कोयले की गली, कोयले वाली गली से, और यहाँ पर राधा जी के बधाई का कीर्तन होगा, राधा जी का अभिषेक होगा और सब ये चीज़ें होंगी। शाम को कुछ लड़के या लड़कियाँ राधा जी के ये सब का अभिनय करेंगे, लीलाओं का अभिनय करेंगे, उसमें भी आप लोग आ सकते हैं। दोपहर में यदि चाव देखना है, चाव के साथ आना है, तो राधा जी के लिए श्रृंगार के थोड़े से सामान अपने साथ में ले आएंगी, उनको यहाँ पर उपहार देंगी और कीर्तन के साथ में उनका अभिषेक भी देखेंगी, जो प्रसाद होगा प्रसाद भी ले जाएंगे। गौ प्रेमानंदे। आज 7 बज गया है, हमने कल ऐलान किया था जो 5:30 से हम लोग 6:30 तक प्रवचन का समय रखेंगे, जैसे कि हम लोग 7 बजे के पहले सभी लोग अपने घर में पहुंच जाएं, अंधकार आजकल हो जाता है। तो आप 7 तो बज चुका है, इसलिए संक्षेप में हम लोगों का आज कृष्ण जन्म से पहले से ही हम लोगों की ये श्रृंखलाएँ चल रही हैं उत्सव की। कल हम लोग मथुरा के जितने बड़े बड़े भागवत के विद्वान लोग हैं, वृंदावन के हैं, उनको निमंत्रण किया है, 5 से लेकर के 7 बजे तक सभा होगी और वे लोग सभी लोग अपने अपने विचारों को कृष्ण के संबंध में रखेंगे। विशेष करके भागवत में भक्ति का स्वरूप क्या है ये विषय रखा है। हम लोग संसारिक आसक्ति रखकर संसारिक कामना के लिए कृष्ण का भजन या जो कीर्तन करते हैं वो शुद्ध भक्ति नहीं है। कृष्ण सभी कुछ दे सकते हैं, यह बात ठीक है। कृष्ण जितने भी अवतार हैं उनके मूल हैं कौन, ये छोटे से जो किशोर बालक कृष्ण हैं, हाथों में बंसी है, सिर पर मर्मुकुट है, यशोदा के जो लाडले हैं, नंद के जो पुत्र हैं और श्रीमती राधिका के जो नाथ हैं, राधानाथ गोपीनाथ, यही सबके आराध्य हैं। शंकर और ब्रह्मा जी तो इनको दर्शन में भी, इनका समाधि में भी इनका दर्शन नहीं कर पाते हैं। राम इत्यादि जितने अवतार हैं सबके मूल हैं, वृंदावन को छोड़कर के कहीं नहीं जाते और राधा जी से इनका संग कभी नहीं छूटता। कृष्ण को प्रसन्न करने के जितने भी उपाय हैं उनमें सबसे उपाय है राधा जी को यदि प्रसन्न कर लो तो कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। कुछ लोग दुर्गा का भजन करते हैं, दुर्गा जी उनकी छाया हैं राधिका जी की, इसलिए दुर्गा राधा जी का यदि भजन पूजन हो जाता है तो इनका भी हो जाता है अपने आप। प्रत्यक्ष रूप से करने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु संसार के लोग इसको समझ नहीं पाते और विशेष करके कलयुग में भगवान का नाम और यही नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, यही नाम करना है। खान पान में कुछ शुद्धि रखनी होगी, प्याज लहसुन सबको छोड़ देना पड़ेगा, धूम्रपान इत्यादि छोड़ दे, अन्य देश से जितने भी देवता और देवी हैं सबको उचित सम्मान दे करके, किंतु पूजा करनी है अपने हृदय में स्थान देना है राधा कृष्ण का, तब तक आप लोगों को भजन का फल है वो ठीक रहेगा। और यदि कृष्ण के बराबर और सबको दिया तो ये पूजा का फल भजन का फल नहीं मिल सकता। कोई भी सांसारिक वासना न हो, जब कृष्ण का नाम लेने पर आँखों में आंसू आ जाए, हृदय द्रवित हो जाए, तो समझना चाहिए कि ये शुद्ध नाम है। नहीं तो अभी अपराध युक्त नामाभास इत्यादि हैं। नामाभास होना भी बड़ा कठिन है। नामाभास से सब जितने प्रकार के पाप ताप सब जल जाते हैं। कोई व्यक्ति ब्रह्मनिष्ठा भी यदि प्राप्त कर ले और ब्रह्म को मिलने की भी उसकी निष्ठा ऐसी योग्यता आ जाए जो ब्रह्म को प्राप्त हो सकता है, तो अभी उसको अपने प्रारब्ध कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। किंतु कृष्ण का एक नाम भी शुद्ध हो जाए और की तो बात अलग रहे, केवल शुद्ध नाम हो जाए, नहीं हो जाए नामाभास भी हो जाए, तो प्रारब्ध कर्म भी मिट जाते हैं, कोई उसको भोग नहीं करना पड़ता। इसलिए बतलाया गया विष्णु का 1000 बार नाम लेने से एक बार राम का नाम का फल होता है। एक बार नाम ले लो विष्णु का सहस्त्र बार, और 3 बार यदि राम नाम लो तो एक कृष्ण नाम के बराबर है। ऐसा समझ करके पूर्ण विश्वास के साथ में भगवान का नाम करें। और फिर हम लोग कल प्रवचन में, परसों अब तो हम लोग यहीं पर रहेंगे और प्रवचन करेंगे, आप लोग नियमित रूप से आएँ। कल जरूर आप लोग 5 बजे से पहले ही आ जाएं, और हमारे ब्रह्मचारी लोग 4:30 बजे कीर्तन आरंभ कर देंगे, जिससे 5 बजे हमारी सभा एकदम आरंभ कर सकें। 1 मिनट देरी भी नहीं होगी, 5 बजे से ठीक हो जाएगा। हमारे ब्रह्मचारी सन्यासी लोग भी प्रस्तुत हो जाएंगे। आज यहीं पर हम अपनी वक्तृता समाप्त कर